एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्पता पर बात करने वाले हैं।
हाँ, कौन सी?
इजाबेल ब्रिग्स मायर्स की द गिफ्ट्स डिफरिंग, हिंदी में कहें तो व्यक्तित्व के मतभेद, उपहार और विकास।
अरे वाह, गिफ्ट्स डिफरिंग मतलब जो हमारे मतभेद हैं वो असल में उपहार हैं।
बिल्कुल, ये किताब इसी बुनियादी सवाल को समझने की कोशिश करती है कि भाई हम इंसान एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं।
सही बात है, कोई एकदम शांत, कोई बहुत बोलने वाला, कोई बस फैक्ट्स देखता है, कोई सपनों में खोया रहता है।
हाँ, और क्यों कोई पार्टियों की जान होता है और किसी को कोना पकड़ना पसंद है।
और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, ये अंतर जो है ये कमियां नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अनमोल उपहार हैं, गिफ्ट्स हैं।
और मुझे लगता है आज के जमाने में ये समझना तो बहुत ही जरूरी हो गया है।
बहुत ज्यादा, चाहे घर हो, ऑफिस हो, समाज हो, हम सब कितने अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं।
बिल्कुल, तो इन अंतरों को समझना, उनकी कद्र करना, ये किताब शायद इसी में मदद करती है।
हाँ, ये एक तरह का फ्रेमवर्क देती है, एक नजरिया देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये गिफ्ट्स डिफरिंग हमें क्या सिखा सकती है।
जरूर, शुरू कहाँ से करें? लेखिका से?
हाँ, लेखिका की कहानी भी काफी अनोखी है। इसाबेल ब्रिग्स मायर्स, वो कोई पारंपरिक मनोवैज्ञानिक नहीं थी।
अच्छा, फिर?
उनकी पढ़ाई तो राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में हुई थी।
अरे, ये तो दिलचस्प है।
हाँ, और शायद यही बात उन्हें खास बनाती है, वो एक बाहरी व्यक्ति थी एक तरह से।
तो उन्होंने ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कैसे?
उन्होंने अपनी माँ कैथरीन कुक ब्रिग्स के साथ मिलकर, मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग के जो जटिल सिद्धांत है ना,
हाँ, साइकोलॉजिकल टाइप्स वाले,
भाई उनको लिया और आम लोगों के लिए आसान बनाया, समझने लायक, इस्तेमाल करने लायक। और इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल लगा दिए।
40 साल, कमाल है। और उनकी माँ का क्या रोल था इसमें?
उनकी माँ ने यंग की किताब पढ़ी थी और उन्हें लगा कि इसमें कुछ बहुत गहरा है, लोगों को समझने की चाबी है।
अच्छा, और इजाबेल को प्रेरणा कब मिली?
उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था दूसरा विश्व युद्ध,
World War II।
कैसे?
उन्होंने महसूस किया कि अगर लोगों को ऐसे काम मिले जो उनके नेचर से मेल खाते हों, उनके व्यक्तित्व के हिसाब से हों,
हाँ,
तो वो ना सिर्फ देश के लिए बेहतर काम कर पाएंगे बल्कि उन्हें खुद भी ज्यादा खुशी, ज्यादा संतोष मिलेगा।
ये तो बहुत मानवीय सोच है, मतलब सिर्फ काम नहीं बल्कि सही इंसान सही रोल में।
बिल्कुल,
ये रोल और गोल वाली बात उनके काम का केंद्र है। उनका मकसद कोई अकादमिक बहस जीतना नहीं था
बल्कि लोगों की मदद करना था।
हाँ, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। और उन्होंने मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर यानी MBTI बनाया, काफी शक और आलोचनाओं के बावजूद,
क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये जरूरी है।
हाँ, कि व्यक्तित्व के इन अंतरों को समझना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। उनका यही प्रैक्टिकल नजरिया इस किताब को खास बनाता है।
तो फिर ये किताब गिफ्ट्स डिफरिंग है क्या असल में, एक लाइन में कहें तो?
एक लाइन में मुश्किल है, पर कोशिश करता हूं। ये किताब कार्ल यूंग के मनोवैज्ञानिक प्रकारों के सिद्धांत का एक सरल प्रैक्टिकल परिचय है।
अच्छा, और इसका मकसद?
मकसद है हमारे आपसी मतभेदों के पीछे छिपे पैटर्न को दिखाना, ये समझाना कि जो व्यवहार हमें अजीब लगता है ना।
हाँ, कभी कभी लगता है ना कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है।
बिल्कुल, तो किताब कहती है कि वो अजीब नहीं, वो शायद उनके सोचने या दुनिया को देखने का एक व्यवस्थित तरीका है, बस हमसे अलग है।
ओह, ये तो नजरिए की बात हो गई।
हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये उस सोच को तोड़ती है कि जीने का, सोचने का या काम करने का कोई एक ही सही तरीका है।
मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा नहीं चलता।
नहीं, मायर्स कहती हैं कि ये जो भिन्नताएं हैं, ये झगड़े की जड़ नहीं बल्कि हमारी ताकत हैं, हमारी समृद्धि का स्रोत हैं,
अगर हम उन्हें समझें और सम्मान दें।
एग्जैक्टली, ये अलग अलग तरह के उपहार हैं जो हम सब एक दूसरे को देते हैं।
तो ये समझने के लिए किताब क्या टूल देती है?
किताब हमें 4 बुनियादी जोड़ों से मिलवाती है, प्रेफरेंस पेयर्स या डाइकोटमीज कहते हैं इनको। ये हमारी सहज पसंद या झुकाव की तरह हैं।
4 पैमाने कौन कौन से?
पहला, हम अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं, बाहर की दुनिया में या अंदर की दुनिया में, यानी बहिर्मुखता एक्स्ट्रोवर्जन ई, बनाम अंतर्मुखता इंट्रोवर्जन आई।
ई वर्सेस आई, ठीक है। दूसरा?
दूसरा, हम जानकारी कैसे लेते हैं, अपनी 5 इंद्रियों से, ठोस चीजों से या पैटर्न और संभावनाओं से। ये है संवेदन सेंसिंग एस, बनाम अंतर्ज्ञान इंट्यूशन एन।
एस वर्सेस एन, ओके। तीसरा?
तीसरा, हम फैसले कैसे करते हैं, तर्क और लॉजिक के आधार पर या मूल्यों और लोगों पर असर के आधार पर, यानी सोच थिंकिंग टी बनाम भावना फीलिंग एफ,
टी वर्सेस एफ। और चौथा,
हम अपनी बाहरी दुनिया को कैसे डील करते हैं। क्या हमें चीजें प्लान करके तय करके रखना पसंद है या हम ज्यादा लचीले और खुले रहते हैं। ये है निर्णय जजिंग जे बनाम अनुभव परसीविंग पी।
जे वर्सेस पी।
अच्छा, तो ई आई एस एन टी एफ और जे पी, ये चार पैमाने हैं।
हाँ, ये चार हमारी पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं।
तो इन पर थोड़ी और बात करते हैं। पहला वाला, पी बनाम आई, बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता। ये सिर्फ वो तो नहीं ना कि कौन ज्यादा बोलता है कौन कम।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बारे में है कि आपको आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, आप रिचार्ज कैसे होते हैं।
एनर्जी कैसे, मतलब? देखो, जो बहिर्मुखी हैं वो बाहरी दुनिया से एनर्जी लेते हैं, लोगों से मिलकर, एक्टिविटीज में हिस्सा लेकर।
हाँ, जैसे पार्टी में जाकर वो और चार्ज हो जाते हैं।
बिल्कुल, उन्हें एक्शन पसंद है, बातचीत पसंद है, वो अक्सर बोलते बोलते सोचते हैं।
ओ अच्छा, और अंतर्मुखी?
अंतर्मुखी अपनी अंदर की दुनिया से एनर्जी लेते हैं, अपने विचारों से, भावनाओं से, अकेले रहकर।
हाँ, तो उन्हें शांति चाहिए रिचार्ज होने के लिए।
हाँ, वो पहले सोचते हैं फिर करते हैं, उन्हें गहराई पसंद है।
तो ऑफिस पार्टी का उदाहरण ले, बहिर्मुखी शायद देर तक रुकेंगे, सबसे मिलेंगे,
और एनर्जाइज महसूस करेंगे,
और अंतर्मुखी
वो शायद जल्दी निकलना चाहेंगे।
हाँ, ताकि घर जाकर अकेले में अपनी बैटरी चार्ज कर सकें। और देखो, दोनों ही ठीक है, बस तरीका अलग है।
सही कहा, दोनों ठीक हैं। अच्छा, अब दूसरा जोड़ा, एस बनाम एन, सेंसिंग बनाम इंट्यूशन।
ये जानकारी लेने का तरीका है।
हाँ, आप दुनिया से इन्फॉर्मेशन कैसे उठाते हो, कैसे सीखते हो।
तो एस वाले कैसे होते हैं?
सेंसिंग।
सेंसिंग।
सेंसिंग वाले अपनी पांच इंद्रियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्हें ठोस वास्तविक जानकारी चाहिए,
मतलब जो दिख रहा है, सुन रहा है, छू सकते हैं।
एग्जैक्टली, वो प्रैक्टिकल होते हैं, डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, अभी और यहाँ क्या हो रहा है उस पर फोकस करते हैं।
अच्छा, और एन वाले, अंतर्ज्ञानी?
इंट्यूटिव वाले पैटर्न देखते हैं, संभावनाओं पर गौर करते हैं, बड़ी तस्वीर देखते हैं,
मतलब वो छठी इंद्री या गट फीलिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
हाँ कह सकते हैं, वो कल्पनाशील होते हैं, भविष्य में क्या हो सकता है इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं।
इसका कोई उदाहरण?
जैसे खाना बनाना, एस वाला व्यक्ति शायद रेसिपी को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेगा, हर चीज नाप तोल कर डालेगा।
हाँ, ताकि गलती ना हो।
बिल्कुल, और एन वाला, वो शायद अंदाजे से चीजें मिलाएगा, थोड़ा ये डाल दिया, थोड़ा वो, कुछ नया ट्राई करेगा।
अच्छा, वो संभावनाओं के साथ खेलेगा।
हाँ, देखेगा कि क्या बनता है, उसे वो प्रोसेस ज्यादा मजेदार लग सकता है।
ये दिलचस्प है। अब आते हैं तीसरे पर, टी बनाम एफ, सोच बनाम भावना। ये फैसले करने का तरीका है, और यहाँ गड़बड़ होती है ना?
हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा गलतफहमी होती, खासकर एफ को लेकर।
तो टी वाले कैसे फैसला करते हैं? थिंकिंग।
थिंकिंग टाइप के लोग तर्क, लॉजिक, सिद्धांतों पर जोर देते हैं, वो निष्पक्ष होकर विश्लेषण करते हैं,
ऑब्जेक्टिव होकर।
हाँ, वो चाहते हैं कि सबके लिए नियम एक जैसे हों। उनका सवाल होता है, तार्किक रूप से क्या सही है?
ठीक है, और एफ वाले, फीलिंग, क्या वो बस इमोशनल होकर फैसले लेते हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। फीलिंग एफ टाइप के लोग भी तर्क का इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, फिर फर्क क्या है?
उनका तर्क व्यक्तिगत मूल्यों, वैल्यूज, सहानुभूति, एम्पथी और लोगों पर क्या असर पड़ेगा इस पर आधारित होता है।
ओह, मतलब वो मानवीय पहलू को ज्यादा देखते हैं।
हाँ, वो सद्भाव चाहते हैं, वो हर सिचुएशन को अलग से देखते हैं कि इसमें शामिल लोगों के लिए क्या सही होगा।
तो मतलब टी और एफ दोनों ही तर्कसंगत हो सकते हैं?
बिल्कुल, बस उनके तर्क का आधार अलग होता है। टी का आधार है सिद्धांत, एफ का आधार है मूल्य और लोग।
इसका कोई उदाहरण दे?
सोचो, टीम में किसी को मुश्किल फीडबैक देना है, टी वाला बॉस शायद सीधे सीधे परफॉर्मेंस डेटा और नियमों की बात करेगा।
हाँ, सीधा और सपाट।
और एफ वाला बॉस, वो भी परफॉर्मेंस की बात करेगा, लेकिन वो ये भी सोचेगा कि फीडबैक कैसे दिया जाए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, टीम का माहौल ना बिगड़े।
वो तरीके पर ज्यादा ध्यान देगा।
हाँ, मानवीय असर पर। दोनों ने लॉजिक लगाया पर प्रायोरिटीज अलग थी।
ये समझना बहुत जरूरी है, एफ मतलब इमोशनल होना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, एफ मतलब मूल्यों के आधार पर निर्णय लेना है।
ठीक है, अब आखिरी जोड़ा, जे बनाम पी, निर्णय बनाम अनुभव, जजिंग वर्सेस परसीविंग। ये बाहरी दुनिया से जुड़ने का तरीका है।
हाँ, आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे उसके साथ इंटरैक्ट करते हो।
तो जे वाले कैसे होते हैं? जजिंग?
जजिंग जे टाइप के लोग एक व्यवस्थित प्लान्ड जीवन पसंद करते हैं, उन्हें चीजें तय करना अच्छा लगता है।
मतलब लिस्ट बनाना, टाइम टेबल फॉलो करना। हाँ, उन्हें फैसले लेना पसंद है, चीजों को अंजाम तक पहुंचाना पसंद है, उन्हें एक तरह का क्लोजर चाहिए होता है।
समझ गई।
और पी वाले, परसीविंग, वो इसके उलट होते हैं।
उलट नहीं पर अलग। परसीविंग टाइप के लोग ज्यादा लचीले, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं।
अच्छा, कैसे?
वो अपने ऑप्शंस खुले रखना पसंद करते हैं, नई जानकारी आने पर अपना मन बदल सकते हैं, चीजों को कई बार आखिरी मिनट तक टालते हैं
ताकि और जानकारी मिल जाए।
हाँ, या शायद उन्हें वो आजादी पसंद है, वो प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, जरूरी नहीं कि तुरंत नतीजे पे पहुंचे।
इसका कोई उदाहरण, जैसे छुट्टियों वाला आपने बताया था?
हाँ, वो बढ़िया उदाहरण है। जे वाला शायद पूरी बुकिंग, पूरा प्लान पहले से तैयार रखेगा।
हाँ, सब कुछ सेट।
और पी वाला, वो शायद बस बैग उठाएगा और निकल पड़ेगा, देखेगा रास्ते में क्या मिलता है, कहाँ रुकना है।
अरे वाह, ज्यादा एडवेंचरस लगता है।
हाँ, उन्हें वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी पसंद होती है।
तो ये चार प्राथमिकताएं, EISNTFJP, ये मिलकर पर्सनालिटी बनाती हैं। लेकिन क्या बस इनको जोड़ देने से टाइप बन जाता है? जैसे कोई कहे मैं INTJ हूं।
नहीं, यहीं पर बात और गहरी होती है। ये चारों मिलकर 16 अलग अलग व्यक्तित्व प्रकार तो बनाते हैं,
हाँ, 16 टाइप।
पर ये सिर्फ 16 डब्बे नहीं है, मायर्स टाइप डायनामिक्स की बात करती हैं।
टाइप डायनामिक्स, वो क्या है?
इसका मतलब है कि हर टाइप में इन चार फंक्शंस SNTF में से एक फंक्शन कप्तान यानी डोमिनेंट होता है।
सबसे ज्यादा प्रभावशाली।
हाँ
अच्छा, लीडर जैसा।
हाँ और एक दूसरा फंक्शन उप कप्तान यानी ऑक्सिलरी होता है, जो कप्तान की मदद करता है।
ओके।
ये कप्तान और उप कप्तान मिलकर तय करते हैं कि उस टाइप का व्यक्ति असल में कैसे सोचेगा, कैसे जानकारी लेगा, कैसे फैसले करेगा और कैसे दुनिया से जुड़ेगा।
तो ये सिर्फ चार अक्षरों का जोड़ नहीं है।
नहीं, ये उन फंक्शंस का एक खास डांस है, एक तालमेल है। जैसे ISTJ टाइप का उदाहरण ले,
हाँ,
उसका कप्तान है इंट्रोवर्टेड सेंसिंग यानी अतीत के अनुभव और ठोस फैक्ट्स पर फोकस,
ठीक है।
और उसका उप कप्तान है एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग यानी बाहरी दुनिया को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना।
अच्छा,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ISTJ को भरोसेमंद, जिम्मेदार और फैक्ट्स पर ध्यान देने वाला बनाता है। यही डायनामिक्स हर टाइप को उसका अनोखापन देता है।
वाह, ये तो सिर्फ लेबल लगाने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो व्यक्तित्व की पूरी मशीनरी समझने जैसा है।
बिल्कुल, ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे और क्यों भी बताता है।
ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, अब अगर हम पूरी किताब के निचोड़ पर आएं, इसके मुख्य संदेश क्या हैं? सबसे बड़ी सीख?
मेरे ख्याल में सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश है भिन्नताओं का मूल्य, वैल्यू ऑफ डिफरेंसेस।
हाँ, कि ये अंतर अच्छे हैं।
अच्छे ही नहीं, जरूरी हैं। मायर्स बार बार कहती हैं कि ये अलग अलग प्रकार कमियां नहीं बल्कि समाज की ताकत हैं। दुनिया को चलाने के लिए हर तरह के गिफ्ट की जरूरत है।
मतलब हमें दूसरों के अलग नजरिए को सिर्फ झेलना नहीं है बल्कि उसकी कद्र करनी है।
बिल्कुल, सराहना करनी है, क्योंकि हो सकता है जो चीज हमें नहीं दिख रही वो उन्हें दिख रही हो,
ये तो भारत जैसे देश के लिए कितना जरूरी है। इतनी विविधता है हमारे यहाँ,
है ना?
परिवारों में, दफ्तरों में। अगर हम समझें कि सामने वाले का बर्ताव शायद उसकी स्वाभाविक पसंद है, तो शायद झगड़े कम हो।
सही बात है।
दूसरा बड़ा संदेश क्या है?
दूसरा है आत्म जागरूकता,
जी,
सेल्फ अवेयरनेस।
खुद को जानना।
हाँ, अपने टाइप को समझना अपने विकास की पहली सीढ़ी है। इससे पता चलता है कि आपकी नेचुरल ताकत क्या है
और कहां आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।
बिल्कुल, ये खुद को बेहतर जानने और स्वीकार करने में मदद करता है।
अच्छा,
और
एक और बहुत जरूरी बात जो किताब साफ करती है, प्राथमिकता बनाम क्षमता, प्रेफरेंस वर्सेस एबिलिटी।
मतलब
ये कि आपका टाइप आपकी पसंद बताता है, आपकी लिमिट नहीं बताता। अच्छा, जैसे कोई इंट्रोवर्ट है तो वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल नहीं कर सकता है। हाँ, हो सकता है उसे ज्यादा तैयारी करनी पड़े, ज्यादा एनर्जी लगे, पर वो कर सकता है। ये टाइप आपकी काबिलियत की सीमा नहीं है।
ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है, वरना लोग टाइप के आधार पे खुद को या दूसरों को सीमित कर लेते हैं।
हाँ, जैसे हम लिखते तो एक हाथ से आसानी से हैं, पर जरूरत पड़ने पे दूसरे से भी लिख ही लेते हैं, थोड़ी कोशिश ज्यादा लगती है बस।
सही उदाहरण है। और कोई मुख्य संदेश?
एक और है संपूर्णता की ओर यात्रा, टाइप डेवलपमेंट।
संपूर्णता मतलब हमें अपना टाइप बदलना है?
नहीं, बदलना नहीं है बल्कि अपने टाइप के सभी पहलुओं को, मतलब जो फंक्शंस कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी धीरे धीरे विकसित करना है।
अच्छा, बैलेंस लाना है।
हाँ, परिपक्वता का मतलब है अपनी कमजोर कड़ियों को भी मजबूत करना। जैसे कोई बहुत लॉजिकल टी है तो थोड़ी सहानुभूति एफ डेवलप करने से उसके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं।
ये तो जीवन भर चलने वाला विकास है।
बिल्कुल, खुद का बेहतर संस्करण बनना।
और आखिरी संदेश?
आखिरी कि ये सब सिर्फ थियरी नहीं है। मायर्स का पूरा जोर व्यवहारिक अनुप्रयोग पर था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इन आइडियाज का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं।
वाह, तो भिन्नताओं का मूल्य आत्म जागरूकता, प्राथमिकता, क्षमता नहीं है, संपूर्णता की यात्रा और व्यवहारिक उपयोग, ये है मुख्य संदेश।
हाँ, ये सब मिलकर हमें इंसानी व्यवहार को देखने का एक नया, ज्यादा पॉजिटिव और समझदार नजरिया देते हैं।
किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे भी होंगे जो दिमाग में अटक जाते हैं, कोट्स जैसे?
हाँ बिल्कुल हैं। एक तो मुझे बहुत पसंद है, उसका सार ये है कि जो व्यवहार हमें अक्सर बेतरतीब या अजीब लगता है वो असल में काफी व्यवस्थित और कोहेरेंट होता है।
कोहेरेंट मतलब?
मतलब सुसंगत। उस व्यवहार के पीछे एक लॉजिक होता है जो इस बात से तय होता है कि व्यक्ति जानकारी कैसे लेता है, परसेप्शन, और फैसले कैसे करता है, जजमेंट। बस वो तरीका हमसे अलग होता है।
ओह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब किसी को अजीब समझने से पहले ये सोचना चाहिए कि शायद उनका सिस्टम ही अलग है।
बिल्कुल, इससे हमें दूसरों के प्रति ज्यादा धैर्य आता है, जजमेंट कम होता है।
हाँ, ये तो है।
और कोई?
एक और है जो मुझे बहुत ताकत देता है, चाहे आपकी जिंदगी के हालात जैसे भी हों, अपने टाइप को समझना आपकी समझ को साफ कर सकता है, आपके फैसलों को बेहतर बना सकता है और आपकी जिंदगी को आपकी असल इच्छाओं के करीब ला सकता है।
वाह, मतलब सेल्फ अवेयरनेस से हम ज्यादा ऑथेंटिक लाइफ जी सकते हैं।
हाँ, ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो वाकई हमारे लिए सही हो, ना कि बस दुनिया को दिखाने के लिए।
ये तो कमाल है। और समाज के लेवल पर कुछ?
हाँ, एक विचार है जो पूरी मानवता के लिए है। मतभेदों का रचनात्मक इस्तेमाल करना इंसानियत के लिए एक बड़ा मौका है। जो गुण लोगों को अलग बनाते वही उन्हें कीमती भी बनाते हैं।
मतलब डाइवर्सिटी ही हमारी ताकत है। बिल्कुल, जब टीम में या समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग नजरिए, अलग अलग हुनर लाते हैं, तो हम सब मिलकर ज्यादा मजबूत और क्रिएटिव बनते हैं।
समस्या तब होती है जब हम सोचते हैं कि बस मेरा ही तरीका सही है।
एग्जैक्टली, जब हम भिन्नता को समस्या नहीं बल्कि संसाधन मानते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? प्रैक्टिकल टिप्स।
सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस एरिया है रिश्ते, रिलेशनशिप्स।
हाँ, घर में दोस्तों के साथ।
बिल्कुल, अपने पार्टनर, बच्चों, पेरेंट्स, दोस्तों, सहकर्मियों के संभावित टाइप को समझने की कोशिश करना, ये गेम चेंजर हो सकता है।
कैसे?
मान लो आप जानते हो कि आपका पार्टनर इंट्रोवर्ट आए है, तो आप समझोगे कि उन्हें अकेले टाइम क्यों चाहिए और आप उसे दिल पे नहीं लोगे।
हाँ, कि वो मुझसे नाराज नहीं है, बस रिचार्ज हो रहे हैं।
सही। या अगर आपका कोई सहकर्मी एस टाइप का है, तो आप उसे कोई नया आइडिया बताते समय हवा हवाई बातें नहीं करोगे बल्कि ठोस फैक्ट्स और डेटा दोगे
ताकि उन्हें बात समझ आए।
हाँ, छोटी छोटी चीजें, जैसे ये जानना कि आपका दोस्त पी टाइप का है, तो आप समझेंगे कि वो प्लान्स को लेकर इतना फ्लेक्सिबल क्यों रहता है।
आप उस पर जबरदस्ती नहीं करोगे।
इससे गलतफहमियां कम होंगी और समझ बढ़ेगी।
बिल्कुल, झगड़े कम, प्यार ज्यादा।
ये तो हुई रिश्तों की बात, और कहाँ काम आ सकता है ये?
दूसरा बड़ा एरिया है करियर और काम, वर्क लाइफ। यहाँ मायर्स का वो रोल और गोल वाला आइडिया बहुत काम आता है।
अच्छा, ये समझने में कि मेरे लिए किस तरह का काम सही रहेगा।
हाँ, क्या मुझे ऐसा काम चाहिए जहाँ खूब लोगों से मिलना हो, शायद ई, या जहाँ शांति से अकेले फोकस कर सकूँ, शायद आए।
या क्या मुझे रूटीन और स्ट्रक्चर पसंद है, एसजे, या नई चुनौतियां और क्रिएटिविटी, एनपी।
ये जानने से हम ऐसे करियर चुन सकते हैं जहाँ हम ज्यादा खुश रहें, ज्यादा प्रोडक्टिव हों, जहाँ हमारा काम हमारे नेचर से मेल खाता हो। और कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं, है ना?
हाँ, बहुत करती हैं। अच्छी टीमें अक्सर अलग अलग टाइप के लोगों से मिलकर बनती हैं।
क्यों?
क्योंकि हर टाइप अपनी अलग ताकत लाता है। कोई प्लानिंग में अच्छा है शायद, कोई उसे लागू करने में शायद एस, कोई नए आइडिया लाने में शायद एन, और कोई टीम को जोड़े रखने में शायद एफ।
वाह, तो एक बैलेंस्ड टीम ज्यादा कामयाब होती है।
बिल्कुल।
रिश्तों और करियर के अलावा
तीसरा और शायद सबसे जरूरी है व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ,
खुद को बेहतर बनाने के लिए।
हाँ, अपनी नेचुरल ताकतों को पहचानना और उनका भरपूर इस्तेमाल करना,
और अपनी कमजोरियों को समझना।
कमजोरी नहीं कहेंगे, कहेंगे वो एरिया जहां हम उतने सहज नहीं हैं, उन कम पसंदीदा फंक्शंस को भी थोड़ा थोड़ा डेवलप करना,
ताकि हम ज्यादा बैलेंस्ड बन सकें।
बिल्कुल, जैसे कोई बहुत टी है तो थोड़ी एफ वाली समझ विकसित करना, या कोई बहुत पी है तो थोड़ा जे वाला अनुशासन लाना। यह हमें ज्यादा संपूर्ण और प्रभावी बनाता है।
तो ये सिर्फ दूसरों को समझने का नहीं बल्कि खुद को संवारने का भी टूल है।
एग्जैक्टली।
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि ये अंतर सच में उपहार है। जैसे कोई दाएं हाथ से लिखता है, कोई बाएं से, इसमें कोई सही गलत नहीं है।
हाँ,
इसने मुझे दूसरों को जज करने के बजाय समझने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया है कि शायद उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है।
ये बहुत बड़ा बदलाव है नजरिए में, और मेरे लिए वो संपूर्णता की यात्रा वाली बात सबसे खास रही।
टाइप डेवलपमेंट।
हाँ, ये जानना कि मुझे बदलना नहीं है, किसी और जैसा नहीं बनना है, बल्कि अपने ही व्यक्तित्व के सारे रंगों को जानना है, उन्हें बैलेंस में लाना है। ये खुद को सुधारने का एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका लगता है।
हाँ, पॉजिटिव तरीका है, खुद को कोसने वाला नहीं।
बिल्कुल।
तो श्रोताओं के लिए जाते जाते कोई विचार, कोई छोटा सा प्रयोग?
हाँ हाँ, एक कोशिश कर सकते हैं। इस हफ्ते किसी ऐसी बातचीत या सिचुएशन के बारे में सोचें जहां आपको लगा कि आप और कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अलग पेज पर थे।
ठीक है।
फिर सोचें, क्या मायर्स के इन जोड़ों को EI, SN, TFJP से आप उनके नजरिए को थोड़ा समझ सकते हैं?
क्या उनके व्यवहार के पीछे उनकी कोई नेचुरल प्रेफरेंस हो सकती थी?
बस सोचना है।
हाँ,
बस उस नजरिए से देखने की कोशिश करनी है। देखें कि क्या इससे आपके महसूस करने या रिएक्ट करने के तरीके में कोई फर्क पड़ता है।
दिलचस्प, ये जरूर करके देखना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।